नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पेज का पहला सवाल है, अल्लाह की मोहब्बत की फिर बुनियाद क्या है? यानी क्या बुनियाद होगी, किस बुनियाद पे अल्लाह की मोहब्बत की इमारत खड़ी होती है? तो ये मारफत है, पहचान है। जो शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेता है, इससे उससे मोहब्बत हो जाती है। और एक बड़ा बड़ा करके इसी खाने में जुमला लिख लें, मोहब्बत इंसान को उसी दर्जे की होती है जिस दर्जे की पहचान होती है। हमें अल्लाह ताला से उतनी ही मोहब्बत होगी जितनी उसकी पहचान होगी। इज़ इट क्लियर? दुनिया में आप किसी चीज़ को पहचाने बगैर, उसके फ़वाद को जाने बगैर उससे मोहब्बत कर सकते हैं? बस यही है इधर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला से मोहब्बत फिर होती कैसे है? कैसे अल्लाह से प्यार करें, उसकी क्या बुनियाद है? अल्लाह से मोहब्बत कैसे, कब, कहाँ? तो याद रखिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत कब आती है, कैसे होती है? नंबर एक, आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, ठीक है? अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं। छोटे से बच्चे को भी अगर आप हवा में उछाल लेंगे ना, तो एकदम आंखें बंद कर लेता है। मरने का खौफ लेकर इंसान दुनिया में आता है। हम अल्लाह ताला से जब मोहब्बत करना चाहते हैं ना, तो पहले खुद से मोहब्बत करें। वो कहते हैं ना कि मन आरफा नफ्सहू आरफा रब्बा, ये एक ज़ईफ़ कॉल है, लेकिन कह लीजिए कि रूहानियत की ज़ुबान में इसको बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ इंसान ए टू ज़ी से। दौरे कुरान एक साल हमने लंदन से किया था। पूरे दौरे कुरान के दौरान हमने पूरे इंसान को अंदर से खोल के देखा, आँख कैसे काम करती, तो बाकी चीज़ें कैसी, और उस सब को पहचान कर हमें किससे मोहब्बत हुई? एक तो अपने से हुई कि हम इतने कॉम्पैक्ट हैं, इतने मुकम्मल तरीके से अल्लाह ने बना दिया, और दूसरी अल्लाह से मोहब्बत। तो ये मुराद है, ये है बुनियाद इंसान की मोहब्बत की, कि जब वो अपने वजूद पे नज़र डालता है तो उसको अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस होती है। और याद रखिए, पहचान फीकी तो मोहब्बत भी फीकी बदरंग। और हसन बसरी कहते हैं, जिसने अपने रब को पहचान लिया उसने उससे मोहब्बत की, और जिसने दुनिया की एक हकीकत को जान लिया वो उससे किनारा कश हो जाएगा। समझिएगा, मैं सिर्फ मिसाल देना चाह रही हूँ, मेरा कोई मुराद इस वक्त किसी को कोक के ख़िलाफ़ करना नहीं है। आप देखिए कि कोक सबको अच्छी लगती है, आमतौर पर बच्चे भी काला पानी उठा लेते हैं, लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके नुकसान, उसका कार्बन, उसका शुगर लेवल देखें तो वो लोग नहीं पीते ना। ये मुराद है, दुनिया बाजार में खूबसूरत, पंपी, ग्लैमरी, जितना दुनिया को देखते जाएं कहते हैं छोड़ो, बेकार, बोझ है, कौन उठाए, कौन रखे, कौन संभाले। और अल्लाह की हस्ती ऐसे है जैसे दूध, बाजार अच्छा नहीं लगेगा, वाइट है, फीका है, लेकिन जब आप दूध का कॉम्बिनेशन देखें, दूध में क्या फ़ायदे हैं, हड्डियाँ जुड़ती हैं, बच्चा 2 साल तक कुछ ना भी खाए, सिर्फ दूध पी ले तो भी बचता है, दैट मीन दूध इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिर आपको दूध से मोहब्बत होती है। तो दो काम करने हैं आज के बाद, मैंने अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, मार्फत लें, और दुनिया को भी ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ताकि उससे जान छूटे हमारी। बड़ी मुश्किल से छूटती है, लेकिन इसको छुड़वाने के लिए भी मुजाहदे करने पड़ते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह से मोहब्बत तो हुई, तो नबी से भी मोहब्बत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे होती है? अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, नबी से भी होगी। जो चाहता है कि अल्लाह से मोहब्बत करे, वो भी नबी से प्यार करे। और नबी सल्लम को अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी, तो याद रखिए, अल्लाह के नबी को आप सारी दुनिया के इंसानों से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत थी। क्यों? आपने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज तो दिल से राबता है अल्लाह से, मोहब्बत अल्लाह से बातों का। और नबी सल्लम की दुआओं में देखिए कि अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक़ दिखता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वज्हिका वश्शौक़ इला लिकाइका। क्या ये दुआ ज़ुबान पे आ सकती है अगर अल्लाह से मोहब्बत ना हो? फिर अगला सवाल क्या है कि तमाम रसूलों ने किसकी इबादत की? यहाँ देखिए कि आप और मैं इबादत करके और इबादत की असल को समझकर रसूलों की उस कड़ी के साथ जुड़ते हैं कि जो दुनिया में बेहतरीन इंसान थे। तो याद रखिए, तमाम रसूलों ने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से मोहब्बत की। सूरह अल-अंबिया 25, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैह, क्या अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, करो क्या फ़ाबुदूनी। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा, मगर हम उसकी तरह वही करते रहे कि यकीनन मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम मेरी ही इबादत करो। सवाल पैदा होता है, तमाम रसूलों की पहली दावत क्या थी? ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि दुनिया के चुने हुए इन लोगों ने अगर जो काम कहा तो वो ठीक ही होगा ना। तो तमाम रसूलों की ये पहली दावत थी, क्या? अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। चंद रेफरेंसेस आपके सामने लिखे हैं, 6 रसूलों के बस नाम लिखने हैं अपने। हज़रत नूह ने ये दावत दी इबादत की, सूरत मोमिनून 23। हज़रत हूद की ये दावत कहाँ है? सूरत हूद आयत 50। हज़रत सवाले सूरत हूद आयत 61। शुएब अल आराफ 85। इब्राहिम की इस दावत का तذکرہ ہے سورت انعام 80 میں، اور سارے انبیاء کی پہلی دعوت اللہ کی عبادت کی تھی، یہ ہے سورت الانبیاء 25 اور زہر 45 میں۔ نیکسٹ کوسچن، کیا اللہ نے ہم انسانوں سے اپنی عبادت کا عہد لیا؟ لیا، ابھی تو ایک ہی بول کے آئے، الستو بربکم، شاباش۔ ایک تو سورہ یاسین آیت 60-61 آپ کے پاس ریفرنس لکھا ہوا ہے، آپ اس کو جا کے پڑھ لیجئے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا بنی آدم؟ تو وہاں تو اللہ نے سوال کیا سورہ یاسین میں۔ کتنے لوگ ہیں جو 300-300 دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھ کر آیت 67-61 پہ رک جائیں؟ کہ اللہ آپ سے وعدہ کوئی لے رہا ہے، کوئی وعدہ پوچھ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے، سورہ یاسین 60-61، اور دوسرا ریفرنس سورۃ الاعراف 172-173۔ نیکسٹ کوسچن کیا ہے کہ ہم عبادت کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ خام خواہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، تو اس وقت اس میں آپ کی شیٹ میں 8 پوائنٹس کے ریفرنسز دیے گئے ہیں، اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے۔ امام رازی ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جان رکھو کہ جس کو عبادت کے فوائد معلوم ہو گئے تو اسے اس میں مشغول ہونے کی لذت حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ والا وقت اس کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ پھر بول دوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کو عبادت کے فائدے پتہ لگ جائیں گے نا، وہ ہر وقت عبادت کی لذت لینا چاہے گا، اور جس وقت ذرا سا وہ اس سے کسی وجہ سے دور ہو جائے گا تو بوجھ ہوگا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جن کو مسجد کی جماعت کی نماز کی عادت ہے، اور جن کو نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے، ساری دنیا ان کو کہ گھر پڑھ لے، وہ کہتے نہیں مجھے تو مسجد پڑھنا ہے، اور لوگ کہیں گے اتنی گرمی اتنی یہ وہ مت رکھیے روزہ، وہ کہیں گے آپ کو کیا مجھے تو رکھنا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو لذت ملتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں کو اپنے خالق، فاطر، الہ، معبود، ولی، مولا، رب، مدبر، رازق، مارنے والے اور زندہ کرنے والے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ نام ہے نا بیچ میں اللہ کے، مطلب یہ ہے کہ دل کو سب سے جو پیاری چیز ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ۔ اس کی محبت جانوں کے لیے برکت، روحوں کے لیے حیات، اور سینوں کا سرور، دلوں کی غذا، عقل کا نور، اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اور باطن کی تعمیر ہے۔ کوئی سمیٹ سکتے ہیں ان لفظوں کو؟ اور جب تک چکھی نہ ہو، جب تک آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہ ہو، یہ لفظ مجھ سے نہیں نکلتے، یاد رکھیے۔ آپ کہیں گے ٹھہرے ذرا، رکیے رکیے، ہم آدھے لکھے آدھے بولے۔ آپ ذرا نوٹ تو کریے کہ امام ابن قیم کو یہ لفظ کس نے ڈکٹیٹ کرائے تھے؟ ان کے دل نے ڈکٹیٹ کرائے تھے۔ ایک لفظ میں بول دوں، باقی آپ کا دل بولے اور وہ لکھے۔ جس نے چکھی نہیں، جس نے پی نہیں، جس نے کھائی نہیں، جس نے نہیں کی تھی، یاد رکھیے کہ وہ بندہ کیسے اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اس چیز پہ غور و فکر کریں اور اپنی حالت ٹھیک کریں۔ اس پورے ویک میں آپ نے اپنی عبادات کو زندہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور پھر صرف ایک ویک میں نہیں، یہ پھر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو آئیے نوٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ پہلی وجہ، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جس کو عبادت کے سوا کسی اور چیز میں سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمارے لیے بس ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم نے نام سنے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اس لیے کہ عبادت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سرور ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے مسند احمد کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ عبادت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ایک سوال کروں آپ سے، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ سکون ملتا ہے۔ کب آخری نماز میں ہمیں یہ کیفیت نصیب ہوئی تھی؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ آپ بچے کو دیکھتے ہیں 2 سال کے بعد، بیٹی ماں ملتی ہیں 10 سال کے بعد، اس وقت آنکھوں میں آنسو ہوتے؟ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا۔ کیا نماز میں آنکھیں بھیگتی؟ ہماری نمازیں زندہ ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ پھر تیسری چیز نوٹ کیجئے گا، اور وہ کیا ہے کہ عبادت کیوں کریں؟ کہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرنا آئے۔ سورۃ زمر 29، जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो इसकी मोहब्बत, नफ़रत, रोक लेना सब अल्लाह के लिए होता है। तो आप कह लीजिए कि इबादत एक बंदे को दूसरों से आज़ाद करती है। आप ये भी इसका कोडवर्ड लिख सकते हैं, इबादत क्यों करे, ताकि दूसरों से बेनियाज हो जाऊं। यही बात अबू दाऊद 4681 में भी है। चौथी चीज़, हम इसलिए इबादत करते हैं कि ये अमानत है जिसको अदा करते हैं। सूरह अहज़ाब 72 याद है किसी को उसका खुलासा? इन्ना अरदनल अमानता। अल्लाह कहते हैं हमने इस अमानत को पहाड़ों पे पेश किया और उन्होंने नहीं उठाया, और बिल आखिर इसको किसने उठा लिया? इंसान ने। तो इबादत अमानत है। कितनी अमानतें हमारे ज़िम्मे, एक एक नमाज को गिन के वक्त के साथ पढ़ना पढ़ाना क्यों लाजमी है? अमानत है। रोज़े नहीं रखे जो छूट जाते हैं हर साल, पूरे करने अमानत है। किसी को आपने $100 देना हो तो देते हैं गिन गिन के? कहते हैं कोई नहीं 80 रख लो, चलो कोई बात नहीं, चले 100 दिया था 102 ले लो, नहीं करते ना। तो ये इबादत हमारे ऊपर अमानत है। फिर पांचवी वजह यह है कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि जहन्नम के अजाब से अपनी पनाह में हमको रखे। सूरह आल इमरान 190 से 192 आखिरी रुकू, और इसी की बात अब इबादुर्रहमान की खसूसियत है कि वो अल्लाह की आग से पनाह मांगते हैं। फुरकान 65-66। छठी वजह इबादत की, हम जन्नत मांग सकें। देखिए आज कुछ टूटी फूटी कोशिश की होगी, कुछ करेंसी जमा की होगी तो कल जाके खरीदेंगे ना। आज पढ़ी कोई नहीं फिर के, हमारी नमाजें बिलाखर इसी बलड़े में आनी है कि अल्लाह खुशूखुजू नहीं था, सुकून नहीं था, नमाजों की रूह जिंदा नहीं थी, लेकिन पढ़ी तो थी ना, तो अब हमें जन्नत दे दे। तो छठी वजह इसलिए कि हम जन्नत का सवाल कर सकें, क्योंकि कुरान और हदीस में जो भी लोग अल्लाह के दोस्त हैं उनकी एक वसफ़ क्या है कि वो नमाजी होते हैं और वो जन्नत और उसके बुलंद दर्जों का सवाल करते हैं। सही मुस्लिम 1094। और फिर इसी तरह से सातवीं वजह अल्लाह ताला की इबादत करने की क्या है? अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया दी, इतना कुछ बना के दिया, लेकिन इसके बदले में हमसे कुछ मांगा तो नहीं ना। देखिए आपको कभी बिजली का बिल आता है ना, हमेशा ही आता है। पानी का आया, कौन सा आता है जो पाइपों से गुजर के आता है, नदी नालों में से आता है? हवा का बिल आता है, इतनी बड़ी छत है आसमान की, उसका बिल आता है। तो आप कह लीजिए कि हम इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री दे दी। ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, बिस्तर, पानी, हर चीज़ बनाकर दी, समंदरों में कश्तियाँ चलाई। तो हम उसकी कुछ पे बैक करने के लिए इबादत करते हैं। बुखारी 73-73 इसकी दलील है। मतलब यह है कि हम अल्लाह को उसकी नेमतों के शुक्राने में कुछ पेश करना चाहते हैं। और आठवीं और आखिरी बात इसमें क्या है, याद रखिएगा, इसके बाद तो फिर वाकई सारा गुरूर तकब्बुर ख़त्म हो जाता है कि अल्लाह को मेरी नहीं किसी मखलूक की भी इबादत की कतन ज़रूरत नहीं है। वो इंसानों की इबादत का मुख्ताज नहीं, कमी नहीं, फरिश्ते मौजूद हैं। सूरह फुस्सिलात 36 और सूरह अंबिया आयत 19-20 फरिश्तों का जिक्र है। आपको क्या पता अल्लाह के कितने इबादत गुजार लोग हैं, कितने हैं, कौन है? तो याद रखिए कि अल्लाह ने अगर हमें इबादत करने का हुक्म दिया है ना, तो ये हमारा अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हम पर एहसान है कि उसने हमें अपने दर का बनाया। आप देखिए कि वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, दिलाता है 1,000 सजदों से आदमी को निजात। आज जिस बंदे ने, जिस सोच ने अल्लाह को पूजना छोड़ा, उस मजहब में 4 करोड़ खुदा हैं, 4 करोड़ बुतों की पूजा करते हैं हिंदू धर्म। मैंने एक हिंदू सिस्टर से ये बात रिकन्फर्म भी की थी, मैंने सुनी भी थी, पढ़ी भी थी कहीं ना कहीं, पर मेरा दिल नहीं मानता था, 4 करोड़ कहाँ है? तो कहती हमारी किताबों में लिखा हुआ है ये पीछे से। वो अपने ख़ास नाम लेते हैं कुछ, जैसे कुतुब, अब्दाल और हमारे नाम है ना, तो वो कहती हैं कि हाँ हमारे धर्म में फलां फलां करके जमा करके बड़े पुरखों पुरखों का वक्त, कुछ इस तरह की बातें कर रही थी। तो इतने करोड़ों की फिर वो इबादत करते हैं, मिल जाता है सब कुछ। आप याद किए रहे कि नबी सल्लम जब दुनिया में आए थे, इबादत के नाम पर क्या था, इतना तशद्दुद था कि वो बोझ और मजबूरी बन गई थी, और कहीं इतनी रुख्सतें थी कि खेल और तमाशा बन गया। आगे हम बढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, कैसे कहीं रहबानियत के नाम पे थे और कहीं मुजाहिदों और मुराकबों और मनाक्षों के नाम पर थे, लेकिन इबादत रूह से खाली थी, महज रस्मी इबादत थी और कुछ भी नहीं था। इस्लाम आया तो उसने क्या कह दिया, वो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को कितना खूबसूरत रखा। देखिए आप जब पढ़ते हैं ये बात के दीन सीधा एक है। अब देखिए मैं आपसे इंसानी तबीयत के अतबार से पूछना चाहती हूँ, एक को राजी करना ज्यादा आसान है या ज्यादा को? एक को, यानी एक फील्ड में एक बंदा, ये कह लीजिए जो वो समझे जो उस वक्त की बेहतर हम कर दें। और अगर एक ही फील्ड में दो लोगों, इस्लाम में दो अमीर क्यों नहीं है, दो लीडर क्यों नहीं है, दो खलीफा क्यों नहीं? चले अबू बकर को जब खलीफा बनाया था, एक सवाल है मेरा आपसे, अशरा मुबशरा में आप देख ही रहे हैं ना ये सारा कुछ, तो आप देखिए कि जब अबू बकर को खलीफा जो बना दिया तो अल्लाह के नबी साथ ही उमर को भी कह जाते एक वक्त में दो हो जाओ। सोरा सोचिए तो सही, अबू बकर और उमर दोनों की खूबियां मिल जाती, अकल तो कहती वाह 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 क्या होता इस्लाम के पौधे पे बहार, लेकिन एक वक्त में एक ही है। हालांकि अबू बकर जिस्मानी कमज़ोर थे, कई चीज़ों में नरम थे, और उमर बहुत सख्त है, लेकिन खलीफा एक ही बना। और कुल हो अल्लाह अहद में भी यही बात है, इबादत आपको मुझे फोकस्ड होना सिखाती है, एक अमीर की इताअत में रहना सिखाती है। सूरत हज या उसकी अगली सूरत है, अल्लाह ताला कहते हैं अगर दो खुदा होते ना तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम बिगड़ जाता। तो ज़रूरत इस बात की कि एक बंदा अपने लिए इसको नेमत समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, इस्लाम ने किन असूलों पर इबादत की बुनियाद रखी, असल क्या थी? तो यहाँ नोट कीजिएगा, छह असूल आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। असूल वही है ना जिसको आप बेसिक्स कहेंगे, रूल्स, वो बुनियादी असूल जिस पर इबादत की बुनियाद है। नंबर एक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। नंबर दो, अल्लाह और बंदे के बीच में वास्तों से आज़ादी, यानी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इखलास, कबूलियत की बुनियाद दिलों का इखलास। और चौथी, अल्लाह की इबादत उस तरीके और कैफियत से जो उसने खुद मुकर्रर की। मसलन नमाज में अगर एक रुकू और दो सजदे हैं तो ये इबादत है, दो रुकू और दो सजदे कर देंगे तो इबादत कबूल नहीं होगी। पांचवी चीज़ है एतदाल, और छठी चीज़ है आसानी। अब इन छह चीज़ों को अगर मैं आपके सामने खोल के रखूँ ना तो हर चीज़ अपनी जगह पे एक मुकम्मल टॉपिक है। मसलन पहला असूल क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है। बात हुई कि पहले बहुत सारे लोग, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई चांद सितारों की, किसी ने आग की पूजा की, किसी ने पानी की, जैसे बनी इसराइल ने गाय की पूजा की थी, आप लोगों ने देखा ही है, कई लोग आज भी करते हैं, कोई जिंदा की पूजा, कोई दरख्तों की, कोई हजर की, कोई नशर की, सब की करते हैं। और हज़रत नूह के दौर के बुतों के नाम तो कुरान में भी लिखे हुए हैं। इंडिया जिसको आप हिंदुस्तान कह लें, छठी सदी ईस्वी में यहाँ खुदाओं की तादाद 330 मिलियन, यानी 3 अरब 30 लाख तक थे, ये रिवायती किताबों में मौजूद है। कहते हैं कि अहले अरब में हर घर में बुत रखे जाते थे, सफ़र पर जाते तो उनसे बरकत हासिल करते थे। सहाबा में से जो लोग अपने इस्लाम से पहले के वाक़ सुनाते थे, कहते थे हर दौरे जाहिलियत में पत्थरों की पूजा होती थी, नया कोई अच्छा पत्थर मिलता ना उसको पकड़ते पहला फेंक देते दूसरे को लेते, और कहीं पत्थर ना होता तो जो चीज़ पास होती देते, फिर उस पर बकरी का दूध डालते, फिर उसका तवाफ़ करते। एक शख्स था सफ़र पे जा रहा था तो हसबे आदत बुत साथ लेकर जाते थे, थोड़ा आगे चला गया तो याद आया कि मैं तो अपना बुत लेकर नहीं आया। अब ये उनके लिए एक बड़ी बदशगुनी थी, अब क्या करे, वापस जाए बहुत वक्त लगेगा। कहा नहीं, मुझे बुत तो बनाना है। खजूरें साथ रखी हुई थी, जैसे घुली हुई खजूरें होती हैं ना मलिदा सा, तो वो रखा हुआ था सफ़र के ज़्यादा राख के लिए। कहने लगा बुत के बगैर सफ़र कैसे होगा, अल्लाह अकबर। उसने अपनी खजूरों को मैश किया, उसको डमी शक्ल में एक अपने जो भी ख्याली तसव्वुर था बुत का उसका बना दिया। चलो शुक्र अब मेरे साथ मेरा खुदा है। थोड़ा आगे गए, भूख लगी, क्या करें, खजूरें नहीं हैं, वो खुदा का हाथ खा गया, यानी सफ़र के आखिर तक बंदा पूरे खुदा को खा गया, ये होता था जी। ये सही वाक्य है, ऐसे वाक़ बेवकूफ़ी के और भी बहुत जगह है। और ये बात तो आपने सही बुखारी में भी पढ़ लें जाके, 4287 नंबर है कि फ़तेह मक्का के दिन जब अल्लाह के नबी हरम में दाखिल हुए थे तो 360 बुत थे। और इसी तरह की चीज़ें थी, यहूद ने देखिए अल्लाह के साथ नाकिस होने की बातें पेश की हुई थी, ईसाइयों ने बाप और बेटे का जो तसव्वुर पेश किया था। कह लीजिए कि ये सब कुछ कैसे कैसे हुआ, इस्लाम ने सारी चीज़ों को ख़त्म की, इस्लाह की। इस्लाम इस्लाह मुआशरा का नाम है, कैसे अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाया, शिर्क को ख़त्म किया, दरमियान के वास्तों को ख़त्म किया। ये जब अगली असल हमने पढ़ी कि वास्ते वसीले नहीं चाहिए, कैसे इस्लाम से पहले वास्ते वसीले थे, आज भी हैं, पॉप के बगैर आप बख्शे नहीं जाते, पंडित के बगैर आपकी मुर्दे की बख्शिश नहीं होती, और अगर इतना खाना पकाकर 40 दिन तक जाके ना डालें तो रूह भटकती रहती है। ये सब कुछ मौजूद था और आज दोबारा कई दुनिया के हिस्सों में मौजूद हो गया। इस्लाम ने इबादत को वास्तों और जगहों और उसकी कैद से निकाल दिया। सारी ज़मीन मस्जिद है, जहाँ मर्जी इबादत करो। आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा हम अपनी मुस्लिम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। किस तरीके से ये बातें मौजूद हैं कि लोगों को इबादत के नाम पर भी जब तक बीच में कोई दूसरा नहीं मिल जाता था, वो अल्लाह के आगे भी नहीं आते थे। बुत सामने ना रखे तो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। वो बुत नहीं मिल रहा, अब बुत तो हम कहते हैं ना, वो तो पता नहीं उसको क्या कहते होंगे। वो नहीं मिल रहा इसलिए ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अल्लाह ने इंसान को इन सारी जकड़बंदियों से आज़ाद किया कि तुम क्या समझते हो। फिर तीसरी शर्त हमने देखी, इखलास। इखलास के बगैर कैसे कबूल हो? आप किसी को ऊपरे दिल से कोई खाने की ऑफ़र दें, वो कबूल करता है? वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, सूरह बैजीन आयत 5। जब तक आप पूरे दिल से अल्लाह के लिए कोई काम नहीं करेंगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। याद रखिए, 99% आप कोई काम अल्लाह के लिए करें और 1% कोई दुनिया का फ़ायदा। साहबा ने कहा, हम जंग में जाते हैं, हम फ़ी सबीलिल्लाह लड़ते हैं, लेकिन दिल में होता है कि चलो शोहरत भी हो जाएगी, बहादुरी के जौहर का। ये फ़ी सबीलिल्लाह नहीं, अल्लाह 99.99 पे भी राज़ी नहीं होता जब तक इखलास ना हो, पूरे का पूरा खालिस अल्लाह का। आप किसी को गिफ्ट दें, कहता मैं आपके लिए लाई हूँ, वैसे दिल नहीं कर रहा था, ले लेगा आपसे? ये मैं गिफ्ट ले आई हूँ, बस मजबूरी थी ना, फिर क्या करती? अम्मा ने कहा था शादी में इतनी बर्तन तो देनी है, ये लेना देना तो हो गई ना, क्या करें। आप 10 साल पहले हमारे घर शादी में 500 रुपये दे गए थे, अब मुझे 501 तो देने थे, रखते। तो इबादत अल्लाह के लिए क्या है? ज़रूरत है इस बात की कि आपकी मेरी इबादत जो है वो अल्लाह के लिए हो। इखलास रखिए। नमाज अल्लाह के लिए है तो रियाकारी बंदों के लिए, रोज़ा रखे तो तकवा के लिए रखे, ज़कात दें तो कबूलियत के लिए रखें, फिर फ़ायदा होगा। और चौथी शर्त आपको बताई है कि तरीका अल्लाह का बताया हो। हज़रत इब्राहिम ने क्या ख्वाहिश की थी जब खाना काबा बना लिया बेटे के साथ, कि रब्बना तकब्बल मिन्ना। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या कहा? वारीना मनासिकाना। इबादत इजाद करने की चीज़ नहीं है। इबादत का मतलब ये नहीं कि तरीका इबादत आप खुद कर ले, आज कोई नई इबादत कर दे, कोई नमाज़ का नया तरीका वज़ा कर दे। नहीं, घुटनों में बहुत सारे लोगों को दर्दें शुरू हो गई हैं, तो बेहतर है कि नमाज में से रुकू सजदा निकाल दें। खड़े खड़े जैसे जाके चर्च में खड़े होकर सीने पे हाथ बांध कर पढ़ते हैं, इसी तरह से हो जाए, ज़रूरत नहीं। याद रखिए, एक जुमला लिख लें कि इबादत का लोगों की ख्वाहिशात और उनके तखय्युलात से कोई ताल्लुक नहीं। सूरत निसा 125 में अल्लाह ताला कहते हैं, वमन अहसनु दीना मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तर्जमा नहीं बोलूँगी आपको, कई दफ़ा ये आयतें सुनी पड़ी हुई आप लोगों की, तो क्या पता चला? इखलास होना चाहिए, यकसू हो। और इब्राहिम की यही खूबी थी कि वो मुखलस थे। बिदत क्यों बुरी है? इसलिए कि वो दीन में से इखलास निकाल देती है। पांचवी शर्त, हमने पांचवा असूल पढ़ा है, एतदाल, बैलेंस्ड। आप देखिए कि इस्लाम से पहले के मज़ाहब में इबादत में गलूफ था। किस तरह? यहूद ने सबसे पहले दुनिया के बारे में गलूफ किया, और किस तरह से उस चीज़ों को रखा, यानी लोगों ने कॉन्सेप्ट्स गलत किए ना। माँ बाप का एहतराम करो ताकि तुम ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहो। यहूद का ये कॉन्सेप्ट था कि इफ़ यू विल बी गुड विद योर पेरेंट्स यू विल लिव लॉन्ग। हालांकि ये वजह तो नहीं है ना माँ बाप को देखने की। फिर इसी तरह से अल्लाह की इबादत करोगे तो रोटी पानी में बरकत देगा और तुम्हें बीमारियों से दूर रखेगा, उम्र बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट तो आज हम मुसलमानों ने भी बच्चों को दिए, बेटा नमाज पढ़ो फिर अल्लाह तुम्हारा पेपर अच्छा करा देगा। एक जुमला बड़ा बड़ा करके लिख लें, कभी अपने बच्चों को और ख़ुद को मशरूत इबादत पे ना लाएं। शर्तें बांध कर जो इबादत की जाती है ना, वो इबादत हद से बढ़ जाती है। फिर नसारा का गलूफ क्या था? आप जाके आज भी इंजील के कुछ रेफरेंस देखें तो उन्होंने क्या कुछ नहीं उलट फुलट बातें लिखी हुई जिसकी ज़रूरत नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, रहबानियत क्या था? एतदाल से बड़ा हुआ दीन था। इनका एक राहिब था मार्कायूस, 6 महीने गदले पानी के जौहड़ में पड़ा रहता ताकि उसके नंगे बदन पर जहरीले कीड़े काटें और उसको तकलीफ़ हो, और इसमें उसको अजर मिलेगा। जी, फिर इसी तरह एक शख्स था, तो वो कह ले कि एक बड़ा वज़न जिसको आप 100 पाउंड कुछ कह लें, उसको उठाए फिरा रखता था। एक और शख्स था, लुसीस उसका नाम कहते आता था, तो 200 रतल लोहा हर वक्त उठाए रहता था। इसी तरह एक शख्स है 3 साल तक खुश कुएं में पड़ा रहा। ये आप सूरह हदीद की तफसीर में, रहबानिया की तफसीर में जाके पढ़ लें तो वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक यूहन्ना राहिब था, इनका 3 साल तक एक टांग पे खड़ा रहा और इबादत करता था, ना सोया ना बैठा। जब बहुत थक जाता था तो अपनी पीठ एक चट्टान के साथ लगा लेता था। तो इस्लाम तो आपको मुझे ऐसी जकड़बंदियों में नहीं डालता। एक राहिब था, कपड़े सिरे से पहनता ही नहीं, बाल लंबे किए और लंबे बालों के साथ जिस्म के प्राइवेट हिस्सों को छुपाता था, और चुपायों की तरह यूं हाथ, जैसे बच्चा क्रॉल करता ना, इस तरह चलता था, सीधा नहीं खड़ा होता था। कहता नहीं जी, शर्मगाह नजर आएगी तो आसमान को दिखेगी। तो जानवर की तरह उल्टा होके चलना। कई लोग गारों में और खुश कुओं में क्यों रहते थे कि हम लोग खुले आसमान के नीचे ना जाएं? बेवकूफ़ी की बातें हैं। अच्छी लगती होंगी ये बातें उनको जिनके पास कोई ख़ास दीन ना हो। तो इस्लाम में इबादत क्या है? एतदाल का नाम है। मोतदल होकर रहेंगे तो फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए कि आज क्रिश्चियनिटी में एक ऐसा भी दौर गुजरा कि गुसल करना उनके यहाँ जुर्म था। हुकूमत मिली उनको मुस्लिम मुल्कों में से, जब आए तो उन्होंने सारे बाथरूम और ये सारे ख़त्म करा दिए कि इससे मुसलमानों की खुशबू आती है। मुराद है कि इससे पता चलता है कि मुसलमान इतने पाक हैं। और तहारत क्या होती है, या आज इसके बाद अगला टॉपिक वही शुरू हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि इस्लाम क्या कहता है। एक राहिब था एंथनी, कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी अब पाँव धोने का गुनाह नहीं किया। अब सोचे ज़रा उसके पाँव से कितनी बू आती होगी। एक इब्राहिम राहब का नाम आता है, 50 साल तक अपने चेहरे और बाज़ुओं को पानी नहीं छुआ। आप खुद सोच सकते हैं क्या होगा। तो फिर इस्लाम ने क्या कहा, मोतदिल रहो। सूरत नूर 37, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैयुन अन ज़िक्रिल्ला। यानी कुछ लोग हैं वो तिजारत करते हैं लेकिन नमाज का वक्त जब आ जाए तो फिर वो उससे गाफिल नहीं रहते। तो दीन और दुनिया रखने का बेस्ट वे ये है कि आप आबिद बन जाएं। पूरा वक्त आपकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के हुक्मों की हो। और इसकी बीसियों मिसालें मौजूद है कि इस्लाम कैसे भलाई। हज के सीज़न में क्या कहा, दुनिया की भी भलाई कि ठीक है, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना। आपको पता है कि ये आयत कुरान में हज के तनाजर में आई है। दीन भी मांगो, दुनिया मांगो, हज करने जा रहे हो लेकिन कुछ अल्लाह की तरफ से फजल भी ढूंढना चाहते हो, कोई चीज़ ले जाओ वहाँ बेच लो, वहाँ से ले आओ, कोई गुनाह की बात नहीं। तो दीन मोतदिल है। और छठी और आखिरी बुनियाद जो हमने पढ़ी वो क्या है, आसानी। ये आसानी है कि नमाजी ना पढ़ो, पर्दा नहीं करो, दाढ़ी ना रखो, बड़ी मुश्किल है। याद रखिए कि इस्लाम से पहले तशद्दुद का रुझान था, लोगों में तशद्दुद पैदा हो चुका था और लोग इबादत के नाम पर अपने ऊपर इतनी मुश्किलात रखते थे और उतना ही नेक समझते थे। इस्लाम ने क्या किया, सूरत आराफ 157, अल्लाह के नबी के खसाइस हैं कि अल्लाह के नबी ने जो बोझ और तौक गलों से उतारे थे आज उम्मत ने फिर डाल लिए। ये आपका उसमें वसफ था। और हज़रत आयशा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी को दो कामों में इख्तियार दिया जाता तो आप वो चुनते जो आसान होता, शर्त यह कि उसमें गुनाह ना होता। और अगर उसमें गुनाह होता तो आप सबसे ज़्यादा परहेज़ करते और सारी ज़िंदगी आपने अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, जब कोई अल्लाह की अजमत में खलल अंदाजी करते तो उससे अल्लाह की रज़ा के लिए बदला लेते। ये बुखारी की रिवायत है 6126। क्या पता चला कि दीन एतदाल का नाम है, आसानियों का नाम है। सवाल पैदा होता है कि इस्लाम ने आसानी पैदा करने के लिए क्या चीज़ें रखी। तो आप 7 मिसालें लिख लें कुरान की, ये खुद लिखेंगे आप लोग। नंबर 1 क्या है, तहारत के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, सूरत मायदा 6। दूसरी बात, मरीज़ के लिए रुख्सत। तीसरी बात, नमाज में रुख्सत सलाते कसर की सूरत में, सुनन निसाई 1434। चौथी, जिहाद की रुख्सत है, अल्लाह कहते हैं उस पर कोई पकड़ नहीं है जो उज़र की वजह से रुक गया। फिर सफ़र में 2 नमाजों का जमा करना, अबू दाऊद 1067। फिर इसी तरह सलातुल खौफ के वक्त में चाहे चलते फिरते भी नमाज़ पढ़ो लेकिन पढ़ लो, सूरह निसा 102। इसकी बहुत बड़ी दलील है, इब्ने माजा में भी है 1258। और रोज़े की रुख्सतें मुसाफिर और बीमार के लिए, सूरह बकरा 185। एक सवाल बनाइए अपने पास, हिकमत क्या है, इबादत में इतनी आसानियाँ क्यों दी गई? क्योंकि देखिए, जो चीज़ इंसान के नफ्स पे बोझ पड़ती है ना, उससे उसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है। अब मुझे बताएं कि कोई 3 साल एक टांग पे खड़ा रहे, ह्यूमनली देख लीजिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को देखिए, उसके बॉडी के जो मसल्स हैं एक्शन ना करना, या वो पाँव जो ऊपर उठा लेता होगा और फिर दूसरे भी उठाता ही होगा मुस्तकिल एक पे तो नहीं है, फिजिकली उसको कितने प्रॉब्लम हो जाए, वो तो स्टिल हो जाएगा ना। इस्लाम आपको मुझे ऐसी चीज़ों में नहीं डालता। इससे दूसरा एक नुकसान क्या होता है, एक राहत पैदा होती है। इबादत से, दीन से लोग फिर बुगज रखने लग जाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सारे चूके इन मुश्किलों को निभा नहीं सकते, तो वो कहेंगे कि फिर हम ऐसे दीन से पीछे हैं। एक सहाबी थे, अबू कतादा की तरफ से एक नस्बत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ और मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ूँ, इतने में मुझे पीछे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो मुझे समझ आ जाता है कि कोई बच्चों वाली माँ भी आई हुई है नमाज़ पढ़ने, और मुझे उसकी माँ को तकलीफ़ देना बुरा लगता है, तो मैं नमाज़ मुख्तसिर कर देता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 6106। आज के इमाम साहब होते तो क्या कहते, बच्चों को मस्जिद ना लाया करें। ये हल नहीं है बच्चों को मस्जिद ना लाएं, तो फिर जब आप नहीं लाएंगे तो वो घर में अपने सन में ही देखेंगे ना, जो उनके हाथों में छोटे छोटे आपने पकड़ा दिए। तो बच्चों को मस्जिदों में लाएं ताकि उनके शैतान दूर हों और उनको इस्लाम का मिजाज दिखे। और एक दुआ भी अल्लाह के नबी ने सिखाई है, बल्कि कुरान की दुआ चले। मैं आपसे पूछती हूँ, इधर नहीं दिया आपको, जान के नहीं दिया रेफरेंस, कुरान की कोई दुआ याद कीजिए, कोई आयत जिसमें इबादत में आसानी के लिए दुआ करते हैं हम। और रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना, सूरत बकरा आयत 286 आखिरी। ये हम दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम पे बोझ ना डाल। तो सवाल पैदा होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है देख लीजिए, कि जब हम अपनी मर्जी की मुश्किलें नहीं डालते तो मसनून ही बातें फिर कौन सी हैं? मसनून का मतलब क्या है, किसको पता? देखिए लफ्ज़ मसनून सन्ना से है, इसमें मीम नहीं होता, ये मफूल का वजन है। सीन नून नून, सन्ना या सुन्नू कहते हैं पुराना होने को। कुरान में लफ्ज़ मसनून जिस रूट से है उससे कोई लफ्ज़ बोलिए, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं है। चले पुराने होने के मानों में हमारे मसनून लम यतसन्ना, शाबाश। कहाँ है? सूरत बकरा तीसरा पारा। लम यतसन्ना में क्या, नहीं वो पुराना हुआ, वो गधे पे जो सामान रखा था, हज़रत उज़ैर का वाक़िया तीसरे पारे में, तो वहाँ सन्ना का मानी पुराना है, यही लफ्ज़ मसनून है। मसनून पुरानी चीज़ होती है। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा? मुहदस। मुहदस कहते हैं नई चीज़ को, हदीस, ठीक है। तो सुन्नत की ऑपोजिट मुहदस, और मुहदस को बिदत कहते हैं, बिदा भी ऐसे में नई चीज़ को कहते हैं ना। तो मसनून ही बात है, यानी जो नबी सल्लम के दौर से चलता आया काम। नंबर एक नमाज, रोज़ा, ज़कात था, जी आपको मेरे से पहले पता है इसलिए आप खुद ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे इंशाल्लाह हम फिर आगे चलेंगे, और वो क्या है, इबादत की शराइत क्या है? बहुत आसान है, दो लफ्ज़ हैं सिर्फ। इबादत की दो बड़ी शर्तें हैं, नंबर एक अखलास, शाबाश। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, अमल साले क्या होता है, जिसकी दो बुनियादें होती हैं, नंबर एक अखलास अल्लाह के लिए करना, किसी और के लिए नहीं, और दूसरी बात तरीका रसूल का हो, सुन्नत तरीके से हो, इसी को इबादत कहेंगे, इसी के साथ सारा मामला चलेगा। तो अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए ये चीज़ें रख दी, और कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, इसको देखने की, करने की। तो यहाँ पे अभी हमारा इबादत का टॉपिक पूरा हुआ है। आप देखिए कि अभी हम इबादत को सिर्फ छू रहे हैं, इंशाल्लाह इससे आगे तहारत का टॉपिक है।